ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। एमाले को कमजोर कर समृद्धि और विकास की यात्रा रोकने का प्रयास सफल नहीं होगा, प्रधानमंत्री व एमाले अध्यक्ष ओली का कथन। पूर्व राजा समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन में तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जारी है, गृहमंत्री रमेश लेखक ने दी जानकारी। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई को 12 दिन की हिरासत में रखकर जांच की अनुमति देने का काठमांडू जिला अदालत का फैसला। देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए सरकार को हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाने की उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग ने दी सलाह। और चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% अतिरिक्त शुल्क लगाने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा, एमाले को कमजोर बनाकर समृद्धि और विकास की यात्रा को रोकने का प्रयास सफल नहीं होगा। रूपंदेही जिला कमेटी द्वारा आज बुटपल में आयोजित जागरण सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि एमाले को विभाजित करने की कोशिश करने वाले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्व असफल हो चुके हैं। उन्होंने कहा, राजतंत्र और पंचायत काल में देश में कुशासन और अराजकता थी, जिसके खिलाफ जनता के बलिदानपूर्ण संघर्ष से लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापित किया गया। सरकार इसे मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही विद्यालय शिक्षा आयन लाने की तैयारी में है, इसलिए शिक्षकों को आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी लगायत गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का क्रम जारी है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की बैठक में गृहमंत्री लेखक ने ये बात कही। ये बताते हुए कि घटना के मुख्य आरोपी दुर्गा प्रसाई को आज गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का क्रम भी चल रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए कि प्रदर्शन में घायल हुए लोगों का इलाज सरकार द्वारा किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद से हो चुका है, गृहमंत्री ने बताया कि इलाज चल रहे अस्पताल से बाहर से भी अगर दवा लानी पड़ रही है तो उसका भुगतान भी सरकार करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान मारे गए दो व्यक्तियों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्णय होकर प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। काठमांडू तीन कोने घटना में शामिल चिकित्सा व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के खिलाफ जांच करने के लिए काठमांडू जिला अदालत ने पुलिस को उन्हें 12 दिन हिरासत में रखने की अनुमति दी है। झापा के भद्रपुर से आज ही नियंत्रण में लेकर काठमांडू जिला अदालत में पेश किए जाने पर अदालत के न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की पीठ ने प्रसाई के खिलाफ जांच के लिए पुलिस को 12 दिन की अवधि दी। ये जानकारी अदालत के सूचना अधिकारी दीपक कुमार श्रेष्ठ ने दी। उसी पीठ ने उनके सुरक्षा सहायक दीपक खड़का को भी 12 दिन के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी है। पुलिस ने बताया कि पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा इसी चैत 15 गते काठमांडू के तीन कुने में किए गए हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने और राज्य के विरुद्ध व संगठित अपराध से जुड़े आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसी मामले में राप्रपा के नेतागण रविन्द्र मिश्र और डॉ धवल शमशेर जबारा भी पुलिस की हिरासत में हैं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए सरकार को हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाने की सिफारिश की है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को आज प्रतिवेदन सौंपते हुए आयोग ने समस्याओं की पहचान करते हुए सुधार के प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है। प्रमुख सिफारिशों में सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, ज्येष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिलने की आयु सीमा 68 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पर 1.5% कर लगाने लगायत शामिल हैं। साथ ही आयोग ने अगले 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार के सामाजिक भत्तों में वृद्धि न करने की भी सलाह दी है। सामाजिक सुरक्षा आयन 2075 के दायरे से बाहर के किसी भी नए भत्ते की बजट में घोषणा न करने का सुझाव भी आयोग का है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको फोर्ज
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने नागरिकों को मुफ्त में दी जाने वाली सेवाओं का विवरण साझा किया है। मंत्रालय ने निशुल्क प्राप्त की जाने वाली सेवा, सेवा प्राप्त करने वाले लक्षित समूह, प्राप्त किए जाने वाले स्थान लगायत का विवरण अपने पुनः डिजाइन किए गए वेबसाइट पर साझा किया है। उसमें निःशुल्क सेवा के लिए आवश्यक कागजात संबंधी जानकारी भी साझा की गई है। बता दें कि मंत्रालय की ओर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से आधारभूत इलाज निःशुल्क किए जाने के साथ ही किडनी व दिल की बीमारी, कैंसर, पार्किंसन, अल्जाइमर, स्पाइनल इंजरी, सिकल सेल एनीमिया और जलन उपचार सेवा अंतर्गत विभिन्न उम्र समूह के मरीजों को विभिन्न सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए स्थान की जानकारी के साथ साथ आवश्यक कागजात लगायत की जानकारियां भी विवरण में रखी गई हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा कुरुंग ने कहा कि गौतम बुद्ध और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान के लिए सभी जरूरी पूर्वाधार तैयार होने चाहिए। आज गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री कुरुंग ने ये बात कही। ये कहते हुए कि दूसरे देश पर उंगली उठाना गलत है, उन्होंने कहा कि विमानस्थल संचालन करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय की है। उन्होंने आगे कहा कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए सभी पूर्वाधार तैयार होने के बाद विमान पूरी तरह संचालित होने का जिम्मा सरकार लेगी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था से पुनः वापस नहीं लौटा जा सकता। नेपाली कांग्रेस भोजपुर के दूसरे जिला सम्मेलन को आज जिला मुख्यालय में संबोधित करते हुए महामंत्री थापा ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि गणतंत्र को संस्थागत करने के लिए इसके अंदर मौजूद गंदगियों को साफ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रणाली में सुधार की जरूरत है और एक पक्ष के लगातार 5 साल तक सरकार चला सकने की व्यवस्था किया जाना भी जरूरी है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री नवल किशोर शाह सूरी ने कहा कि देश को सड़क बाल बालिका मुक्त करने के अभियान में सरकार जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल बालिका दिवस के संदर्भ में साथ साथ नामक संस्था द्वारा आज काठमांडू में आयोजित सड़क से आबद्ध बच्चों और मंत्री के बीच अंतर संवाद कार्यक्रम में मंत्री सोडी ने ये बात कही। विद्युत नियमन आयोग ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को डेडिकेटेड फीडर और ट्रंक लाइन का बकाया उठाने की प्रक्रिया पुनः आगे बढ़ाने का निर्देश किया है। बता दें कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को आत्मसात कर आयोग के 2081 कार्तिक 14 के निर्देशों के अनुसार बकाया वसूलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश किया है। महोत्तरी जिले की बलवा नगरपालिका वार्ड नंबर 11 धमोरा गांव में 25 लोगों में टीबी की बीमारी का संक्रमण पाया गया है। ये जानकारी जनस्वास्थ्य कार्यालय की स्वास्थ्यकर्मी प्रतिभा सिंह ने दी। धमोरा स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज वीरेंद्र महतो ने बताया कि यहां 17 से 74 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में टीबी का संक्रमण पाया गया है। संक्रमितों में से 12 लोग अभी स्वास्थ्य चौकी के संपर्क में हैं और दवा ले रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में फैलकर गंभीर रूप ले सकती है। स्थानीय स्वास्थ्य टीम ने संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता और उपचार अभियान तेज कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने एक बार फिर से अमेरिका से आयातित उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ा दिया है। अब यह टैरिफ 125% होगा। इससे पहले बुधवार को चीन ने अमेरिका के सामान पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीन की ओर से लगाई गई टैरिफ की नई दरें कल शनिवार से लागू होंगी। हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि अगर इसके बाद भी अमेरिका शुल्क में बढ़ोतरी करता है तो भी वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा यह एक मजाक बन जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये टैरिफ सिर्फ अमेरिका की धौंस और दबाव को और ज्यादा उजागर करेंगे। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये 9 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ट्रंप ने इसमें 50% टैरिफ और बढ़ाने की घोषणा कर दी। चीन ने इसके जवाब में बुधवार को अमेरिकी सामान पर टैरिफ को 50% बढ़ाते हुए 84% कर दिया। गुरुवार को अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 145% करने का ऐलान कर दिया और बाकी देशों को 90 दिन की छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर एक समान 10% कर दिया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एमाले को कमजोर कर समृद्धि और विकास की यात्रा रोकने का प्रयास सफल नहीं होगा, प्रधानमंत्री व एमाले अध्यक्ष ओली का कथन। पूर्व राजा समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन में तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जारी है, गृहमंत्री रमेश लेखक ने दी जानकारी। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई को 12 दिन की हिरासत में रखकर जांच की अनुमति देने का काठमांडू जिला अदालत का फैसला। देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए सरकार को हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाने की उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग ने दी सलाह। और चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% अतिरिक्त शुल्क लगाने का किया ऐलान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।